بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی کلمہ بولتے تھے, ارشاد فرماتے تھے, تو اس کا تین مرتبہ اعادہ فرماتے تھے, یعنی ایک ہی کلمے کو تین مرتبہ اپنی زبان سے بولتے تھے. حتیٰ تفہم, یہاں تک کہ وہ بات سمجھی جاتی تھی. حتیٰ تفہم عنہ, یہاں تک کہ وہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھ میں آ جاتی تھی. اس سے دو بات معلوم ہوئی. پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ اہم باتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ بولتے تھے. دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دہرانے کا مقصد سامنے والے کو سمجھانا تھا, کہ سامنے والے بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لیوے, اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات کو دہرا دہرا کر کے بولتے تھے. تیسری بات اس سے یہ سمجھ میں آئی کہ کلام ایسا ہونا چاہیے جو مخاطب کو سمجھ میں آوے, چاہے ایک مرتبہ سے سمجھ میں آوے, چاہے تین مرتبہ سے, چاہے پانچ مرتبہ سے, کلام آپ کا ایسا ہو جو مخاطب کو سمجھ کے اندر آوے. اگر آپ کا کلام ایسا ہو کہ جو مخاطب کو سمجھ میں نہ آوے, تو پھر اس کلام کا حاصل کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا, وہ تو کلام لغ و کے مشابہ ہو گیا. کلام تو ایسا ہو کہ آپ جس کو خطاب کر رہے ہیں وہ آپ کے کلام کو سمجھے, یہ مقصد ہے اصل. اور یہی مقصود جو ہے تقریر وغیرہ میں بھی ہونا چاہیے کہ آپ تقریر کرو, واعظ کرو, تو سامنے والے کو آپ کی بات سمجھ میں آنی چاہیے. اب آپ اتنی فصیح اردو میں بیان کرے کہ بھائی سامنے والا فیروز اللغات لے کر کے الفاظ ڈھونڈتے بیٹھے کہ بھائی ان کی تقریر میں تو ہر سامے کو فیروز اللغات لے کے جانا پڑتا ہے, تو اب وہ بیچارہ کیا تقریر سمجھے گا اور کیا کرے گا وہ. وَإِذَا أَتَى عَلَى قَوْمٍ, اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم کے پاس تشریف لے جاتے, فسلم علیہم, حضور ان کو سلام کرتے, تو سلم علیہم سلاسن, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ ان کو سلام کرتے تھے. اب یہ جز ذرا سمجھنے کا ہے, بھائی سلام بھی حضور تین مرتبہ کرتے تھے, کیا مطلب تین مرتبہ سلام کرنے کا؟ تو پہلی توجیہ سمجھو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے گھر پر تشریف لے گئے, ایک مرتبہ سلام کیا, اندر سے جواب نہیں ملا, تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری مرتبہ سلام کرتے. دوسری مرتبہ سلام کرنے کے باوجود اندر سے جواب نہیں ملا, تو تیسری مرتبہ سلام کرتے. तीसरी मर्तबा भी जवाब नहीं मिला, वापिस हो जाते। तो ये तीन मर्तबा सलाम का पहला मतलब समझ में आ गया। किसी के यहाँ तशरीफ़ ले गए, अंदर से जवाब नहीं मिला, दूसरी मर्तबा, तीसरी मर्तबा। जैसे सहाबा के वाकियात में मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सहाबी के घर तशरीफ़ ले गए, वो सहाबी ने सलाम सुना भी और दरवाज़े के पीछे से चुपके से जवाब दिया भी, लेकिन इतनी ज़ोर से जवाब नहीं दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन सके। फिर हुज़ूर ने दूसरी बार किया, फिर उन्होंने आहिस्ता से जवाब दिया, फिर हुज़ूर ने तीसरी मर्तबा सलाम किया, उन्होंने आहिस्ता से जवाब दिया, फिर हुज़ूर वापस चलने लगे। तो वो सहाबी दौड़ के आ गए, लिपट गए और हुज़ूर को गल ले गए। हुज़ूर ने पूछा, जवाब क्यों नहीं देते थे? तो कहा, मैं चाहता था कि आपकी दुआएं मिलती रहे हमको। सलाम एक दुआ है, अगर मैं पहली मर्तबा में जवाब दे देता तो आप ये दुआ आगे नहीं देते, इसलिए मैंने आपकी दुआ लेने के लिए ज़ोर से जवाब नहीं दिया। दूसरा मतलब समझो, बतौर इस्तीज़ान तीन मर्तबा सलाम करना। पहला और दूसरा तकरीबन तकरीबन एक है, बतौर इस्तीज़ान, इसलिए कि उस ज़माने के अंदर इजाज़त तलब करने का बेहतरीन तरीक़े वाहिदा सलाम था कि भाई किसी के यहाँ आप गए, जाके आपने सलाम किया तो घर वालों को पता चल गया कि आप उनके घर पर पहुँचे हैं, और सलाम आपने किया है घर में दाखिले की इजाज़त तलब करने के लिए, इसलिए आपने उनको सलाम किया है। तो आपका सलाम करने का मकसद क्या है? घर में दाखिल होने की इजाज़त तलब करना, बतौर इस्तीज़ान आपका सलाम। नंबर तीन, तीसरी बात समझो, किसी जगह तशरीफ ले गए, मजलिस हुई या मजलिस में आप तशरीफ लाए, तो मजलिस के शुरू में सलाम किया, मजलिस के दरमियान में सलाम किया, मजलिस के आखिर में सलाम किया, ये है तीन मर्तबा सलाम। मजलिस के शुरू में, मजलिस के दरमियान में, मजलिस के आखिर में, तीन मर्तबा सलाम। क्यों? इसलिए कि शुरू में जब मजलिस में पहुंचे तो जितने लोग मौजूद थे उनको सलाम मिल गया, फिर जो लोग बाद में आए वो सलाम से महरूम है, इसलिए दरमियान वाला सलाम उनको शामिल करने के वास्ते। फिर मजलिस के इख्तिताम पर सलाम, ताकि जो भूला भटका आखिर में आया था उसको भी सलाम मिल जाए, इसलिए ये तीन मर्तबा सलाम। जैसे कि क्लास में दाखला हुआ तो जितने सूफी साफी लोग बैठे हुए इनको सलाम कर दिया, अब कुछ इधर बाहर निकले हुए हैं पानी पीने, कुछ बाहर तफरी करने निकले हुए हैं, वो बेचारे अव्वल सलाम से महरूम रह गए, तो अब दरमियान में एक सलाम कर लिया है, ताकि जो शुरू के सलाम के वक्त मौजूद नहीं थे उनको भी सलाम मिल जाए। फिर आखिर के अंदर सलाम, ताकि वो अलविदाई भी हो जाए और कोई आखिर में मजलिस में आया हो उसको भी सलाम मिल जाए। तीसरी तौजीह समझो, जब किसी मजलिस में तशरीफ ले जाते, बड़े मजमे में जाना हो तो दाईं तरफ सलाम, बाईं तरफ सलाम और सामने सलाम, ताकि सब तरफ सलाम पहुंच जावे, मजमा बड़ा हो। और वहां तशरीफ ले गए तो तीन तरफ सलाम, दाएं बाएं सामने, ताकि सबको सलाम पहुंच जावे। अगर चीज तौजीह को बाज़ हज़रात ने पसंद नहीं किया है, तीसरी तौजीह को, वो यूं कहते हैं कि भाई आप किसी मजमे में जाओ और सिर्फ सामने सलाम कर दो जोर से, तो सबको सलाम की आवाज़ पहुंच जाएगी। हाँ, उसमें कमी बेशी होगी कि भाई कहीं आवाज़ कम पहुंची, कहीं आवाज़ ज़्यादा पहुंची, ताकि सामने की तरफ सलाम करने से सलाम सबको पहुंच जाएगा। इसीलिए इस तीसरी तौजीह को बाज़ हज़रात ने पसंद नहीं किया है। लेकिन एक अहम बात जहन में रखना, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आम आदत नहीं थी, बल्कि एक आरजी बात थी, आम मामूल की बात नहीं थी कि तीन मर्तबा सलाम करना आरजी। कभी ऐसा हो गया? जी। रिवायत पहले हो चुकी पूरी तफसील के साथ। तर्जमतुल बाब से रब्त इतना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बावाज़ बुलंद ऐलान फरमाया, वैलुल लिल अक़ाब मिनन नारी मरतैन औ सलासन। दो या तीन मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बावाज़ बुलंद इरशाद फरमाया। बस इसका इस बात हो गया कि दो या तीन मरतबा, उससे अगर दो वाली बात है तो एक मसलक बताया गया था कि कमी बेशी भी जायज़ है, तो दो में कमी आ गई तो तर्जमतुल बाब मर्रतैनी औ सलासन के ज़रिए से साबित हो गया। जी। अच्छा, अपने तरीका अपनावे तो चलेगी नहीं कि जो हदीस गुजर चुकी हो ऐसी आवे, जैसे कि बकसरत आएगी, क्योंकि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तो एक एक हदीस बुखारी में 17-17 मरतबा लाए, तो जब भी दूसरी मरतबा आवे तो उस दिन आप लोग तकरीर सुनाओ हदीस की, ऐसा कुछ निज़ाम बनावे तो कैसा रहे। इसलिए अव्वल मरतबा जब ये हदीस आई थी तो उस पर जो बात बताई गई थी पूरी बात आप बतलाइए, जरा सोच के जवाब दीजिए। बाबू तालीमिर रजुली अमतहु व अहलहु। तर्जमतुल बाप का खुलासा किया, नंबर एक, आदमी अपनी बांदी और अपने अहलो अयाल को भी तालीम देवे। बांदी को भी तालीम देने की और अहलो अयाल को भी तालीम देने की, यह है तर्जमतुल बाप कायम करने का मकसद। आज के ज़माने में क्या कहा जाएगा? अपने यहाँ मुलाजमत करने वाले, चाहे किसी तरह की भी मुलाजमत करते हो, सफाई, रोटी, कपड़े, खेत, दुकान, कहीं पर भी अपनी यहाँ मुलाजमत मजदूरी करने वाले जो होते हैं, उनकी तालीम की फिक्र आदमी को करनी चाहिए, इसलिए कि वो बेचारा मुलाजिम हमारे यहाँ काम कर रहा है और हमको दुनियावी फ़ायदा पहुंचा रहा है, तो हम उसको दीनी फ़ायदा पहुंचा रहे, उसकी तालीम की फिक्र करके दीनी फ़ायदा पहुंचा दे रहे। अब यहाँ तर्जमतुल बाप के अल्फाज में गौर करो, अमत मुकद्दम है अहल मौखर है, कि बांदी की तालीम की फिक्र करे और फिर फरमाया घर वालों की तालीम की फिक्र करे। देखा, इशारा इस बात की तरफ देना चाहते हैं कि आम मतन लोग बांदियों की तालीम की फिक्र करते ही नहीं है। बांदी यानी काम करवाने का, घरेलू काम, मुख्तलिफ काम, और जीमा करे आदमी उससे, किसी में ही आदमी उनको लगाए रखता है। तो आम वतन बांदियों की तालीम के ऊपर बिल्कुल तवज्जो नहीं हुआ करती, इसलिए लफ्ज़े अमत को मुकद्दम करके इस बात की तरफ इशारा किया कि भाई ये बांदियाँ जो है, जिसको अल्लाह ने तुम्हारी ममलूक बनाया है, उनकी भी तालीम और तरबियत का फिक्र करो। ये बड़ा अहम मसला है। आज हमारे घरों के अंदर मुलाजमत के लिए आने वाले खादिमाएँ, खेतों में काम करने वाले खादिम, हमारे दफ्तर ऑफिस में काम करने वाले और हमारे यहाँ मुख्तलिफ नौ से मुलाजमत करने वाले, हम उनकी तालीम तरबियत का कोई ध्यान नहीं देते, उनकी तालीम की फिक्र करनी चाहिए। बाज़ अल्लाह के बंदे हैं ऐसे कि जो अपने यहाँ खिदमत करने वाले मर्द, खिदमत करने वाली औरतों की तालीम तरबियत का मुस्तकिल फिक्र करते हैं। बाज़ मुसलमान फैक्ट्री वालों को मैं जानता हूँ कि उन्होंने अपनी फैक्ट्री में मकतब भी कायम करवाया है मुलाजिमों की तालीम के वास्ते, फिर उन मुलाजिमों को चालू तनख्वाह पर साल में, दो साल में, तीन साल में बारी बारी चिल्ला भी बेचते हैं वो जमात में। बाकायदा ऐसा एहतमाम है उनकी फैक्ट्रियों में, मकतब का निज़ाम है और जो है उनको चिल्ले में भेजने का निज़ाम है, खानकाह में भेजने का निज़ाम है। ये अच्छे सेठ लोग हैं कि जो अपने मुलाजिमीन की तालीम की फिक्र करें। अफसोस तो हमें ये है कि हमारे दारुल उलूम में ये निज़ाम नहीं है, कुछ दारुल उलूम में है, सब जगह नहीं है। बहुत से दारुल उलूमों में, जामियात में खिदमत करने वाले मुलाजिमीन साल हाँ साल से बेचारे काम करते हैं। अब कितने लोग वहाँ आके पढ़ते हैं, फ़नून उलूम हासिल करते हैं, लेकिन ये मुलाजिमीन दरबान है, मतबख के सफाई के खादिम हैं, बावर्ची है, रोटी वाले हैं, उनकी तालीम का कोई निज़ाम नहीं। उनका निज़ाम बनेगा तो यही कि तुझे इतने बजे झाड़ू देने का, इतने बजे ये करने का, इतने बजे ये करने का। कैसा तरीका है, हम सबको पढ़ा रहे हैं लेकिन अपने यहाँ जो मुलाजिमीन आ रहे उनको ही नहीं पढ़ा रहे। तो ये काबिले गौर मसला है, बड़ा अहम मसला है कि अपने यहाँ खिदमत में आने वाले मुलाजिमीन, चपरासी, अजीर, उन सब की तालीम का निज़ाम होना चाहिए, घर में आने वाली खादिमाओं का भी। ये लफ्ज़ अमत को मुकद्दम करके इशारा हुआ, इसीलिए कि आदमी अहलो अयाल की तालीम की तो कुछ फिक्र कर लेगा लेकिन खिदमत करने वालियाँ और बांदियों की तालीम की कोई फिक्र करता नहीं है। इसलिए इस तर्जमतुल बाप से यह अहम बात बतलाई जा रही है दूसरी बात समझो, तर्जमतुल बाप का दूसरा मकसद। इसलिए आप लोग अपने अपने घरों में जाकर ये निज़ाम बनवाओ। अम्मी को कहो कि घर में काम वाली आती है, उसको रोज कलमा पढ़ाने का, सूरतें सिखाने की, नाजरा नहीं आता है तो वो सिखाओ, नमाज नहीं आती है तो वो सिखाओ, वुजू गुसल के मसाइल सिखाओ अपने आने वाली खादिमाओं को। ये निज़ाम बनवाओ अपने घरों के अंदर। नंबर दो, तर्जमतुल बाप का दूसरा मकसद, तालीम के लिए एक तो हैं बाकायदा हलकाए दर्स कायम करना। जैसे कि ये हलकाए दर्स चल रहा है, इस पर मसाजिद में भी हलकाए दर्स होता है, तो बाज़ाब्ता तालीम के अलावा गैर रस्मी तालीम का भी सिलसिला होना चाहिए। ये तो एक निज़ाम के मातहत तालीम है। ये भाई दर्स हो रहा है, सबक हो रहा है, मस्जिदों में तालीम हो रही है, ये है एक रस्मी मुनज़्ज़म तालीम का सिलसिला। इसके अलावा भी तालीमी सिलसिला होना चाहिए जो गैर मुनज़्ज़म हो। क्या मतलब गैर मुनज़्ज़म तालीमी सिलसिले का? जैसे मौका मिले वैसे लोगों को तालीम देनी चाहिए, जहाँ जैसा मौका मिल गया तालीम देनी चाहिए। बाज़ लोग जो हैं न चलते फिरते मुअल्लिम होते हैं, जहाँ जो कोई मिल गया उसको कोई दीन की बात सिखा दी, कोई बुराई से रोक दिया, चलते फिरते उनका यही सिलसिला रहता है। इन्हीं के जितनी देर पढ़ाने बैठेंगे इतनी ही देर मुअल्लिम नहीं। अइनमा कुंतु अजालनी मुबारकन अइनमा कुंतु, जहाँ रहेंगे वहाँ वो तालीमी बरकतों के साथ चलेंगे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, रास्ते में चलते फिरते कोई मुसलमान नज़र आ गया, भाई ये अपने हाथ में क्या पहना है? चांदी? अरे भाई मुसलमान के लिए जायज़ नहीं। किसी मुसलमान ने अंगूठी सोने की पहनी, अरे भाई ये क्या पहने, मर्द के लिए सोने की अंगूठी गुनाह है। जहाँ कोई मिल गया तालीम चालू है, कोई नौजवान मिल गया सर पे डाई लगे, अरे बेटे ये क्या क्या, ये डाई वाले बाल तो गुनाह का काम है, कैसे घर डाल लो तुम। चलते फिरती तालीम, जहाँ मिले तालीम तालीम तालीम, इसका सिलसिला होना चाहिए। नंबर तीन, हदीस शरीफ के अंदर बांदी की तालीम का तस्केरा है, इसीलिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बांदी की तालीम को मुकद्दम किया। हदीस शरीफ में बांदी की तालीम का तस्केरा आया है, इसीलिए हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बांदी की तालीम को मुकद्दम किया। फिर लाए वअहलहू, क्या मतलब कि जो बांदी है उसकी तालीम की ताकीद है, तो बीवी की तालीम तो बदरजे औला ज़रूरी है। समझ लिया इमाम बुखारी का इस्तिदलाल कैसे है? जो हदीस लाएं बाप के ज़ेल में, वहाँ बीवी की तालीम नहीं है, वहाँ बांदी की तालीम है। अब इस्तिदलाल हम कैसे करेंगे कि जब बांदी की तालीम की अहमियत हदीस शरीफ से साबित है, तो बीवी की तालीम तो बदरजी औला हदीस शरीफ से साबित होगी। तो बांदी और बीवी के दर्जे में बहुत बड़ा फर्क, तो बांदी की तालीम की तब तरगीब मिलती है, तो बीवी की तो बदरजी औला तालीम होनी चाहिए। और इस मामले के अंदर बड़ी कोताही हो रही है, बड़ी कोताही। लोग बीवी की तालीम नहीं करते, खाना पकवाएंगे, कपड़े धुलवाएंगे, घर को सफाई करवाएंगे, बच्चे जनते जाएंगे, लेकिन बीवी को तालीम ही नहीं देते। बहुत बड़ी कोताही है, गफलत है लोगों में। आप तजुर्बा कर लो, मौलवियों की बीवियों का जाकर के आप इम्तिहान लो, मौलवियों की बीवी को, क्या उनकी बीवी को बुनियादी मसाइल की मालूमात है, बुनियादी इस्लामी अकीदे, वुज़ू गुस्ल के मसाइल, नमाज के मसाइल? मौलवियों की बीवियों को कितने को मालूम है? आप जाओ जांच करके मुझे रिपोर्ट दो। अब कितना बड़ा जुल्म हो रहा है कि बीवी से खाना पकवाया, कपड़े धुलवाए, सब काम किए, लेकिन कभी मौलवी ने बैठ करके बीवी को नहीं कहा चल तहियात सुना, सुरते सुना, तू कैसी नमाज पढ़ती है वो दिखा मुझे। कितनी बड़ी गफलत है कि उनकी तालीम की तरफ कोई तवज्जो नहीं। तो शोहरों को चाहिए कि अपनी बीवियों की तालीम के ऊपर तवज्जो देवे, ये भी तुम्हारी एक जिम्मेदारियों में से है। हुकूके ज़ौजियत में ये भी शामिल है कि उसको आप ज़रूरी दीन से वाकिफ करो, इसमें शामिल है ये चीज़ भी। हमने कानून बनाया, हमारे नूरानी मकातिब में तकरीबन 600 का स्टाफ है, हमने 5 साल पहले से कानून बनाया हुआ है कि हर मौल्लिम अपनी बीवी को पढ़ावे, और पढ़ा करके जिन बंजर बस्तियों में मौल्लिम पढ़ाने जाते हैं बीवी को साथ ले जावे, और बंजर बस्तियों की औरतों को आपकी बीवी पढ़ाएगी, मर्दों को आप पढ़ाएंगे, और दोनों को अलग तनख्वाह मिलेगी, ताकि इस बहाने भी पढ़ाए बीवी को। तब पहले आप अपनी बीवी को पढ़ाओ, पढ़ा करके बीवी को तैयार करो, फिर बंजर बस्तियों में आप लोग जाते हो तो साथ में बीवी को भी ले जाओ और बीवी से भी पढ़वाओ, तो बड़ी हद तक उसमें कामयाबी मिलेगी, बड़ी हद तक। तो ये होना चाहिए जी। एक लतीफ़ा है सच्चा, लेकिन है बड़ा ज़ोरदार, आपके लायक है। हम दौरे में जिस साल थे तो हमारे एक रफ़ी के दर्स दरमियाने साल छुट्टी लेके गए एक दिन की। तलबा तो टोह में रहते हैं, क्यों छुट्टी लेके गए? पता चला कि वो रिश्ते के लिए लड़की देखने गया था, तो आते ही मजा आता है हर एक साथी। तो आया तो उसको पूछा, बाद में तो वो माशाल्लाह बुखारी पढ़ाते हो गए शेखुल हदीस, एक जगह पूछा कि तू लड़की देख के आया क्या? हाँ। अब साथी उसका इंटरव्यू ले रहे हैं। तब उनके माशरे में ऐसा दस्तूर है कि लड़के लड़की को बिठा के बातचीत भी कराता है, ये उनके माशरे का रिवाज है। अगर लड़का इंतखाब के लिए जाएगा किसी लड़की को देखने तो कुछ वक्त देंगे, वाली भी बैठेंगे, बात करने का मौका देंगे। अब इंटरव्यू की बात आई तो तलबा अब इनका इंटरव्यू ले रहे साथी लोग कि तूने पहले क्या पूछा था, देखा मैंने इसको ये पूछा कि तो स्कूल कितनी चौपड़ी पड़ी है, तब लो अबू सुफियान के सवाल पर हिरकल ने तबसेरे किए थे ने, तो पूरी जमात तबसेरा कर रही है, तू कितनी पढ़ा था कि तूने यूं पूछा कि तू कितनी पढ़ा, तू स्कूल में कितनी पढ़ा है कि तूने पहला ही सवाल ये किया। बहरहाल ये मैंने इसलिए मुकालमा नकल किया कि आप लोगों का ये सब मरहला अकरब है, तो इंतखाबी मरहले के अंदर फस्फर बिजाती दीन, वो दीन कितना पड़ी है वो पहले देखना कि सही नाजेरा पड़ी है, दीनी बुनियादी मालूमात है, कुरान सही पड़ी है, उर्दू लिखना पड़ा सीखा है कि नहीं है, बेस्ती जेवर तालीमुद्दीन वगैरह किताबें पढ़ी है नहीं पढ़ी है, बुनियादी दीन। ये न हो कि कोई बिल्कुल बेपढ़ी लिखी आपके सर पड़े, ये न हो जाए, इसलिए ये अव्वल मरहला है। अब कितनी स्कूल पढ़े वो अपने को क्या लेना देना, लेकिन दीन कितना पढ़े कितनी दीनी उसको मालूमात है, ये अव्वल फिक्र होनी चाहिए इंतखाब के वक्त के ऊपर। तो फस्फर बिजाती दीन के अंदर ये भी शामिल है कि जहाँ उसकी अमली जिंदगी की दीनदारी देखनी है, वहाँ इल्मी हैसियत से कितनी दीनदारी है उसमें, यानी कितनी दीनी मालूमात है उसके अंदर, कितना दीन पढ़ा है, और बाकायदा जो है सालेहाती कानिताती तय्यबाती होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि बुनियादी दीनी चीज़ें पढ़ ली हो बहुत काफ़ी है। तो ये अहम चीज़ है, उसको मलहूज रखना जहन में, पूछ लेना पहले कि भाई नाजिरा ज़रा सुना दे, मैं सुन लूँ दो चार जगह से नाजिरा, कुछ मसाइल पूछ लेने के या पर्चा लिखवा लेने का। حدثني ابو بردة عن ابيه یہ حضرت ابو بردة رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد یعنی حضرت ابو موسیٰ اشعری سے نقل کرتے ہیں، ابیہ سے مراد ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب اس سند کے بارے میں ایک بات دیکھو، ایک راوی آئے ہیں صالح ابن حیان، یہ جو ہے نا صالح ابن حیان، ان کو صالح ابن حی بھی کہتے ہیں، خاندانی نسبت کی وجہ سے کبھی ان کو صالح ابن حی کہتے ہیں اور کبھی ان کو صالح ابن حیان کہتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الجہاد میں اور کتاب الانبیاء میں جہاں ان کی سند سے روایت لی ہے، وہاں صالح ابن حی یہ لفظ نقل کیا ہے سند میں، صالح ابن حی۔ تو یاد رکھنا کہ کتاب الجہاد میں اور کتاب الانبیاء میں جہاں صالح ابن حی آئیں گے کہ وہی ہیں صالح ابن حیان، لیکن کبھی ان کا نام صالح ابن حیان کبھی ان کا نام صالح ابن حی۔ دوسری بات سمجھو، اس سے اوپر جو استاد ہیں المحاربی، یہ جو محاربی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد کے استاد، استاد ہے محمد اور استاد کے استاد ہے محاربی، عبد الرحمن ابن محمد ابن زیاد، ان سے پوری صحیح میں دو روایت آئی ہے، اس راوی سے پوری صحیح میں صرف دو روایت آئی ہے، لیکن لوگوں نے ان کے معاملے میں ایک غلطی کی ہے کہ یہ جو محاربی ہے عبد الرحمن ابن محمد ابن زیاد، ان کو لوگوں نے غلطی میں بخاری کہہ دیا ہے، محاربی کو बुखारी बुखारी बना दिया है तो गलती है, ये बुखारी नहीं है। ये हदीस शरीफ जो आई है अल जामे उस सही में 7 जगह पर आई है ये हदीस। قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلاسۃن لہم اجرانی، 3 قسم کے لوگوں کو ڈبل ثواب ملے گا، 3 قسم کے لوگوں کو ڈبل ثواب ملے گا، 3 طرح کے لوگوں کو ڈبل ثواب ملے گا۔ نمبر 1، رجل من اہل الکتاب، اہل کتاب کا آدمی، کتابی آدمی، اہل کتاب کا آدمی، آمن بنبیہ و آمن بمحمد، جو اپنے نبی کی نبوت پر بھی ایمان لایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر بھی ایمان لایا۔ یہ ہیں پہلا آدمی۔ اب اس جز کو ذرا سمجھو، اہل کتاب سے کون مراد؟ تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ اہل کتاب سے مراد ہے تورات والے، اہل تورات مراد ہے۔ نمبر 2، بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ تورات اور انجیل دونوں کے حاملین مراد ہے، تورات اور انجیل دونوں کے حاملین، اسی کو پہلا قول قرار دے دو کہ جو تورات اور انجیل کے حاملین عاملین ہے وہ مراد ہے۔ دوسرا قول، انجیل کے حاملین مراد ہے۔ کیوں بھائی، صرف انجیل کے حاملین، تورات کے حاملین کیوں نہیں؟ اس دوسرے قول والوں کی رائے یہ ہے کہ انجیل نے آ کر کے تورات کو منسوخ کر دیا تھا، اس لیے صرف حاملین انجیل مراد ہوں گے، حاملین تورات مراد نہیں ہوں گے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ تورات اور انجیل دونوں کے حاملین مراد ہے، اس لیے کہ انجیل میں تورات کے احکام کی جزوی نسخ تو آئی ہے، بہت سے احکام کا جزوی نسخ آیا، لیکن انجیل نے آ کر کے تورات کو بالکلیہ طور پر منسوخ نہیں کیا، اسی لیے تورات اور انجیل دونوں کے حاملین مراد ہے۔ اور یہ سلسلہ قیامت تک کے لیے ہے، یہ بشارت قیامت تک، یعنی جو آدمی پہلے یہودی ہو، تورات کا عالم ہو، عامل ہو، حامل ہو، انجیل کا عامل ہو، حامل ہو، اور وہ ایمان لاوے شرع محمدی کے اوپر، تو قیامت تک کے لیے اس کے لیے یہ بشارت ہے جو اس حدیث شریف میں آئی ہے، فلہو اجران والی۔ دوسری بات، اہم بات، سابقہ نبی پر جب اس کا ایمان تھا، یعنی جب شرع محمدی پر ایمان نہیں تھا، سابقہ نبی پر ایمان تھا، اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اجمالی ایمان تھا، اور اب شرع محمدی پر ایمان کی برکت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تفصیلی اور یقینی ایمان ہو گیا۔ یعنی پہلے جب یہ ایمان نہیں لایا تھا، تورات یا انجیل کو پڑھتا تھا، تو تورات اور انجیل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا تذکرہ ہے، حضور کا نام اس میں گرامی ہے، حضور کے اوصاف کا تذکرہ ہے، تو سابقہ نبی پر ایمان کے زمانے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اجمالی طور پر تو اس کا ایمان تھا ہی تھا. جیسے خود روایتوں میں موجود ہے کہ زبور میں بھی حضور کا تذکرہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوں گے, صاحب حکومت نبی ہوں گے. یہ زبور میں موجود ہے, اور بعض مفسرین نقل کرتے ہیں کہ آج تک زبور کے نسخوں میں یہ بات موجود ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا اور صاحب سلطنت نبی ہونا. یعنی جس طرح داؤد علیہ السلام میں یہ دو صفات تھی, نبی اور صاحب سلطنت, اور داؤد علیہ السلام پر زبور اتری ہے, تو اس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی ہوں گے اور صاحب سلطنت نبی ہوں گے. ضمناً زبور میں 150 سورتیں تھیں, قرآن میں 114 سورت ہے, زبور میں 150 سورتیں تھیں. احکام نہیں تھے, ساری اللہ کے حمد اور ثنا تھی. احکام تو اس زمانے میں بھی تورات والے ہی تھے. خیر, تو جو اہل کتاب, جو کتابی جب سابقہ نبی کی نبوت پر ایمان رکھتا تھا, اس زمانے کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اوپر اس کا ایمان تھا, سابقہ آسمانی کتابوں میں حضور کا جو تذکرہ ہے اس کی بنیاد پر. اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرع مقدسہ پر ایمان لایا, تو اب حضور پر اس کا ایمان ہو گیا تفصیلی اور یقین کے اضافے کے ساتھ ہو گیا. ایک ہو گیا. نمبر دو, والعبد المملوک, وہ آدمی جو کسی کا غلام ہو, وہ آدمی جو کسی کا غلام ہو اور اللہ کا حق ادا کرے, یعنی عبادت کرے, شریعت کے احکام پورے کرے اور اپنے آقاؤں کے حق بھی ادا کرے, یعنی اپنے مالک اپنے آقا کے حقوق بھی ادا کرے, اس کو بھی ڈبل اجر ڈبل ثواب ملے گا اللہ تعالیٰ کے یہاں. نمبر تین, ایک آدمی کی ملکیت میں باندی ہے اور وہ باندی سے جیما ابھی کر رہا ہے. یہ قید کیوں لگائی باندی کے ساتھ, یا تا اوہا جیما بھی کر رہا ہے, اس قید کو بھی سمجھو. پرانے زمانے کے اندر باندیوں کا رواج تھا, لیکن باندی ہونے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ آدمی اپنی ہر باندی سے جیما کرے. جیما کے لیے مخصوص باندی ہوتی تھی, یعنی خاص کر لیتے تھے کہ میں اسی باندی سے جیما کروں گا, اس سے نہیں کروں گا. یہ طریقہ ہوتا تھا. تو باندی ہو اور ہر باندی سے وہ جیما بھی کرے, یعنی اس کی ملکیت میں باندی ہو اور اس سے جیما بھی کرے. فَأَدَّبَهَا, اور اس کو وہ ادب سکھلاوے, یعنی تعلیم دیوے, شریعت کی تعلیم دیوے. فأحسن تأديبها, اور اچھی طریقے سے تادیب کرے, اچھی طریقے سے ادب سکھاوے. فأحسن تأديبها, دیکھو غور کرنے کا مقام ہے کہ باندی کو تعلیم تادیب کیسے کرنے کی. احسن, اچھی طریقے سے. کیا مطلب اچھی طریقے سے کرنے کا؟ نمبر ایک, باندی کو تعلیم دیتے وقت پر سختی کا برتاؤ نہ کرے. بلکہ نرمی اور مہربانی سے تعلیم دے. نمبر دو, جو تعلیم شریعت کی نظر میں احسن ہے وہ تعلیم دینی ہے. شریعت کی نظر میں جو تعلیم کہلانے کے قابل ہے وہ تعلیم دینی ہے, وہ آسن تعلیم کہی جائے گی. اور ظاہر ہے کہ شریعت کی نظر کے اندر احسن تعلیم وہ ہیں جو انسان کو خالق کے ساتھ جوڑ دے وے، یعنی دین کی تعلیم، شریعت کی تعلیم، دینی معلومات، دینی تربیت، دینی ادب سکھلانا، یہ ہیں فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا. اس سے کیا معلوم ہوا کہ باندی مملوک ہے پھر بھی اس کے ساتھ تعلیم میں اچھا طریقہ اپنانے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، تو جو آزاد ہے ان کے ساتھ بدرج اولا احسن طریقہ اپناؤ تعلیم میں. سمجھ رہے ہو نقطے کی بات؟ باندی کے ساتھ جب احسن طریقہ اپنانا ہے تعلیم میں، حالانکہ باندی ہے، باندیوں کو تو آقا کوڑے بھی مارتے ہیں، تو غلام اور باندی کو تو لوگ کوڑے بھی مارتے ہیں، ان کو تعلیم میں احسن کا خاص طور پر حضور نے حکم دیا، تو پھر آزاد کو تو تعلیم میں بدرج اولا احسن اپنانا چاہیے. اس سے کیا معلوم ہوا کہ تعلیم کے اندر غیر ضروری سختی نہیں ہونی چاہیے. اب جو نئے نئے مدرس بنتے ہو، بچوں کو اتنا مارتے ہیں، بعض تو ایسا لگتا ہے کہ ان کے استادوں نے اس کو مارا تھا، وہ اس کا بدلہ لیتے ہیں، اب استاد بن گئے. ابھی کہتے بھی ہے کہ ہم پڑھتے تھے تو ہمارے استاد تو یوں مارتے تھے، وہ کس سے سناتے سناتے اپنے بچوں کو مارتے ہیں. تو کیا تم تمہارے طلبہ سے بدلہ لینے بیٹھے ہو؟ تمہارے اساتذہ نے تم کو مارا تھا اس کا؟ یہ طریقہ غلط ہے، یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے. اچھی تعلیم تادیب ہونی چاہیے. وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، اور اس کو علم سکھاوے اور بہترین علم سکھاوے. ادب تربیت بھی بہترین اور تعلیم بھی بہترین. ثُمَّ آتَقَهَا، پھر اس باندی کو آزاد کر دے وے. فَتَزَوَّجَهَا، بے یارو مددگار نہیں چھوڑے، آزاد کر گئے، نکاح کر لے وے، نکاح کر لیا، خود کی بیوی بنا ڈالی. یعنی ایک بیوی سے جتنی ضروریات متعلق ہوتی ہے اس سے زیادہ وہ اس باندی سے آج تک فائدہ اٹھا رہا تھا، جیما بھی کر رہا تھا، گھریلو کام کاج بھی کرواتا تھا، سب کچھ تھا، پھر بھی آزاد کر دیا. اور آزاد کر کے اب اس کو بیوی کا درجہ دے رہا ہے، یعنی ترقی دے رہا ہے. باندی سے بیوی بنایا، یہ ترقی ہے. فلہو اجرانی، ایسے آدمی کو ڈبل ثواب ملے گا. ایسے آدمیوں کو اللہ تعالی کی طرف سے دوہرا اجر دیا جائے گا. اب چند ضروری امور اس حدیث شریف کے متعلق سمجھو. اہل کتاب، کون سے اہل کتاب؟ تو بعض حضرات نے یہ رائے دی کہ جو اہل کتاب اپنے نبیوں کی صحیح صحیح تعلیمات پر قائم تھے، تحریف اور تبدیلی کے بغیر، وہ اہل کتاب ایمان لاوے، ان کے لیے یہ بشارت ہے. اس لیے کہ سابقہ انبیاء کے ادیان میں تو تحریفات بہت ہوئی، تو پچھلے نبیوں کے دین کے اندر جو تحریف ہوئی، تبدیلیاں ہوئی، اس سے پہلے پہلے، تحریف اور تبدیلی سے پہلے، انبیاء کی اصلی تعلیم کے اوپر جن لوگوں کا ایمان اور عمل تھا اور پھر شرع محمدی پر ایمان لائے، تو غیر محرف غیر مبدل شرع سابقہ پر ایمان ہے، عمل ہے، اور شرع محمدی پر ایمان عمل ہے، یہ مراد ہے. نمبر دو، بعض حضرات نے اس کو عموم پر رکھا ہے اور یہی بہتر ہے. عموم کا کیا مطلب؟ किताबी हो बस ये काफी है, यानी साबिका नबी की शरीयत पर ईमान रखता है, चाहे मुहर्रफ और मुबद्दल शरीयत पर ईमान रखता है, चाहे असली गैर मुहर्रफ मुदल मुबद्दल पर ईमान रखता है, आम है। क्यों ऐसा? ऐसा उमूम इसलिए बेहतर है कि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़माने के अंदर जो अहले किताब थे उनकी अक्सरियत उन लोगों की थी जो मुहर्रफ और मुबद्दल शराए पर ईमान रखते थे। होंगे असली शरीयत पर ईमान रखने वाले कहीं खाल खाल, अक्सरियत वो थी जो मुहर्रफ और मुबद्दल शरीयत पर ईमान रखते थे। और दूसरी अहम बात किया इसमें नुक्ते की है, भले वो मुहर्रफ और मुबद्दल शरीयतों पर ईमान रखते थे, अब जब शरीए मोहम्मदी में दाखिल हुए ईमान लाए तो गलतियों का इजाला हो जाएगा, गलतियों का इजाला हो जाएगा। शरीए मोहम्मदी पर ईमान इल्म अमल की बरकत से मुहर्रफ मुबद्दल शराए वाली गलती का इजाला हो जाएगा कि भाई हम पहले अल्लाह को मानते थे लेकिन तसलीस के साथ मानते थे, अब शरे मोहम्मदी पर ईमान लाने की बरकत से वो तसलीस वाली गलती का इजाला हो गया, सफाई हो गई उसकी। इसीलिए हर तरह का किताबी ये मुराद है। उसके बाद समझो ये तीनों तरह के इंसानों को दोहरा अजर मिलेगा चूंकि उन्होंने दो अमल किए, दोहरे अजर की वजह किया दो अमल। तीनों को देख लो, एक है साबिका शरीयत पर ईमान, शरे मोहम्मदी पर ईमान, अल्लाह का हक अदा करना, बंदों का हक अदा करना, और बांदी होने की हैसियत से उसके साथ ज़रूरत पूरी करना और फिर बीवी बना लेना। हर एक में दो अमल है इसलिए दोहरा अजर मिलेगा। नंबर दो, ये तीन आदमी का तस्केरा किसी खास मौके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, वरना जो भी दो अमल करे उसके लिए दोहरा अजर है, जो भी दो अमल करे उसके लिए दोहरा अजर है। देखो हमारी शरीयत में उमूमियात है ना ऐसे कि जिस अमल के अंदर डबल पहलू आ जाते हैं तो वहां डबल अजर भी बढ़ जाता है। मिसाल के तौर पर आप दो रकात नफिल पढ़ रहे हैं, अब उस नफिल के अंदर आप जो है सलात तोबा की नियत करो, सलात शुक्राना की नियत करो, सलातुल हाजा की नियत करो, और वक्त है उसके मुताबिक इशराक चाश की नियत करो, तहियतुल वुजू की नियत करो, तहियतुल मस्जिद की नियत करो, तो अजर बढ़ता चला जाएगा। तो जहां पर भी अमल के अंदर ऐसी शक्ल पाई जाएगी वहां तकसीस नहीं है, हर एक को इस अल्लाह ताला ज्यादा अजर अता फरमाएंगे। बाज हजरात ने यूं तौजीह की कि तीनों का अमल एक है लेकिन अल्लाह डबल अजर दे रहे हैं, तीनों का अमल एक ही है लेकिन अल्लाह अजर दे रहे हैं डबल। कैसे एक ही अमल है कि पहले को ले लो, वो किताबी तो है ही है, काम तो उसने एक ही किया कि शरे मोहम्मदी पर ईमान लाया, किताबी तो था ही था, वो काम एक ही किया शरे मोहम्मदी पर ईमान लाया। नंबर दो को देख लो, गुलाम तो था ही, लिहाजा अपने आका का तो सारा काम करना ही करना है, अब अल्लाह का हुक्म भी पूरा कर रहा है। बांदी थी, जिमा कर ही रहा था, अब बीवी बनाने, तो एक ही काम है। यानी पहले वाली हालत को कि भाई वो हालत तो है ही, नई हालत का एतबार होगा। तो अमल एक, अजर दोहरा, ये बाज हजरात की राय है। बाज हजरात ने यूं तौजीह की है कि ये तीनों को बड़ी मशक्कत है, बड़े मवानेआत है, उसके बावजूद ये अमल किया, इसलिए दोहरा अजर है। तीनों को बड़ी मशक्कत है, बड़े मवानेआत है, उसके बावजूद उसने अमल किया, इसलिए दोहरा अजर इनको मिलेगा। अब तीनों की मशक्कत समझो। एक आदमी किताबी है, अपने दीन को, अपनी शरीयत को, अपने किबले को, सबको बरहक समझता है, किताबी है। अब उसको एकदम छोड़ करके नई शरीयत, नए किबले, नए दीन को अपनाना, ये बड़ा मशक्कत भरा अमल है। मसलन किताबी होगा, ईसाई होगा, तो जानिब मशरिक की तरफ रुख करके इबादत करता होगा। अब अगर वो मुसलमान हो गया तो जिधर किबला पड़ता है उधर रुक करके काबा पड़ता है, उधर रुक करके नमाज पढ़नी पड़ेगी। कितना बड़ा मशक्कत भरा काम है कि आज तक जिस किबले को बरहक समझा उसको छोड़कर नए किबले को अपनाना, आज तक अपने ईसाई मजहब को सही समझा उसको छोड़ करके अब इस्लाम को सही समझना, गुलाम को ले लो, कितनी मशक्कत। एक तरफ आका के तकाजे पे तकाजे पूरे करने के, काम पे काम करने का, साथ में अल्लाह की इबादत करने का। इसीलिए जिन उजरों की वजह से नमाज बाजमात की को छोड़ने की इजाजत है, उसमें वो बेचारा गुलाम भी है कि जिसका आका उसको इजाजत न देता हो, काम में सख्ती करता हो। तो एक तरफ आका के सारे काम नखरे उसको पूरे करने, और दूसरी तरफ वो अल्लाह का हुक्म भी पूरा कर रहा है, कितनी मशक्कत उठा रहा है। ये कितनी बड़ी मशक्कत के एक औरत को जिसको बांदी बना के रखा था, अब बीवी बना के रखने का। तो तीनों काम के अंदर मशक्कत है, इस बुनियाद पर दोहरा अजर है। अक्ल का तकाजा ये था। अब उसकी एक मिसाल कुरान में मौजूद है, आपने मिश्कात शरीफ में हदीस पढ़ी है कि जो आदमी अटक अटक कर कुरान पढ़ता हो, यानी जिस बिचारे का कुरान में रवानी नहीं है, पढ़ने में अटक अटक के पढ़ता है, लेकिन फिर भी वो पढ़ता है बामशक्कत, फलहु अजरान, उसको भी दोहरा सवाब मिलता है मशक्कत की वजह से। तो शरीयत में मशक्कत अजर को बढ़ा देती है। मजीद समझो, अक्ल का तकाजा ये है कि ये तीनों को एक ही अजर मिले, लेकिन हदीस शरीफ में सराहतन दोहरे अजर की फजीलत दी गई, तो ये खिलाफ अक्ल दोहरा अजर अल्लाह ताला की तरफ से उनको दिया जा रहा है। और हदीस शरीफ में इन तीनों कामों की तरगीब देना है, असल तो दोहरे अजर की फजीलत बतला करके ये तीनों काम की तरगीब देना है कि अहले किताब तुम शरे मोहम्मदी पर ईमान ले आओ, डबल सवाब कमाओ। ए गुलामों, आका का दुनियावी मालिक का तो सारा हक अदा करते हो, अल्लाह का भी हक अदा करो, डबल सवाब कमाओ। हे आका, तू बांदी से जिमा कर रहा था, तालीम दे और उसको आजाद करके बीवी बना, डबल सवाब कमा। असल तो तरगीब देना है इन तीनों तरह के आमाल के जरिए, तीनों तरह के आमाल की। और कोई ये सवाल करे कि इन तीनों को दोहरा अजर दिया जा रहा है, ये इनकी फजीलत बढ़ गई, तो समझो कि ये जुज़वी फजीलत है, उसकी वजह से इनकी कुल्ली फजीलत साबित नहीं हो जाती। किसी एक मामले में इनको अजरान वाली फजीलत हासिल हो रही है, ये जुज़वी फजीलत है, और इस जुज़वी फजीलत की वजह से कुल्ली फजीलत साबित हो जाती नहीं है। अब आगे इमाम बुखारी एक बात फरमाते हैं, सुम्म काला आमिरुन, आमिर शाबी रहमतुल्लाही ताला अलैह, जो इस हदीस के रावी हैं, उन्होंने फरमाया मैंने ये हदीस दे दी बगैर किसी चीज लिए दिए, बगैर माल लिए दिए, बगैर कोई चीज लिए दिए ये हदीस मैंने तुमको सुना दी, इससे भी कम चीज हासिल करने के लिए हम बाकायदा मदीना का सफर करते थे। इससे भी कम दीनी चीजें हासिल करने के लिए हमने कूफा से मदीना का सफर किया है। ये आमिर शाबी कूफी है। ये जुमले का मतलब क्या वो समझो, एक खुरासानी आया था, खुरासानी, उसने मजलिस में हजरत आमिर शाबी से सवाल किया। सवाल ये किया कि कोई शख्स अपनी बांदी को आजाद करे और उससे निकाह कर ले, तो लोग उसको कहते हैं कर्रा की भी अलाबुद नदी ही, तान देने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, तो ये भी एक तान देने का तरीका, कि बांदी को आजाद करके अगर कोई बीवी बनावे निकाह करे तो लोग कहते हैं अर्रा की अलाबुद नदी ही। तो हजरत आमिर शाबी रहमतुल्लाह अलैह ने ये हदीस सुना कि उसको, ताकि उसका जवाब हो जाए कि भाई ये कोई गलत काम नहीं, ये तो बहुत अच्छा काम है कि बांदी को आजाद करे और निकाह कर ले रहे, ये कोई बुरी चीज नहीं कि उस पर तुम ताने मारो, ये तो बहुत अच्छी चीज है। फिर उस खुरासानी को हजरत आमिर शाबी ने ये जुमला कहा, ऐ खुरासानी, इतनी बड़ी बात मैंने तुझे सुना दी मुफ्त में, फ्री ऑफ चार्ज, इससे भी कम दर्जे की दीन की बात सीखने के लिए हम कूफा से मदीना का सफर करते थे। और इंसान का मिजाज है कि बगैर मशक्कत के जो चीज मिलती है उसकी कदर नहीं होती, तो तू मेरी बताई हुई बात की ना कदरी मत करना, कदर से लेना जो हदीस मैंने सुनाई है, ये आमिर शाबी रहमतुल्लाह अलैह ने उसको कहा। दूसरी बात, हजरत आमिर शाबी ये हजरत इब्राहिम नखई रहमतुल्लाह अलैह के मुआसिर हैं और उनके मिजाज में बड़ी दिल लगी थी, हजरत आमिर शाबी के मिजाज में दिल लगी थी, इसीलिए उन्होंने अपने तलबा को दिल लगी में ये जुमला फरमाया है। ये दूसरा आयत है, प्यारो ये हदीस तो मैंने तुमको सुना दी, ना कदरी की निगाहों से मत देखना, कुछ तुमसे लिया दिया नहीं है, मुफ्त में हदीस सुनाई है। कितनी अहम हदीस हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुना दी, इससे कम दीन की बात के लिए हम कुफा से मदीना का सफर करते थे। तो ये अपने तलबाए अजीज को आमिर शाबी रहमतुल्लाह अलैह ने बतौरे दिल लगी के ये जुमला इरशाद फरमाया। तीसरा एहतमाल, तलबा को तंबीह करना है। आमिर शाबी रहमतुल्लाह अलैह तलबा को तंबीह फरमा रहे हैं कि मेरे प्यारे तलबा, आम मिजाज ये हैं कि बेमशक्कत जो चीज़ मिलती है लोग उसकी कदर नहीं करते, ध्यान नहीं देते, लिहाजा तुमको बेमशक्कत जो दीन का इल्म मिल रहा है तो उसकी नाकदरी मत करना कि दीन का इल्म मिला भूल गए, अमल नहीं किया, इशात नहीं की, बल्कि पूरी कदर करना, पूरी कदर से काम लेना। इससे भी छोटी बात सीखने के लिए हम कुफा से मदीना का सफर करते थे और तुमको घर बैठे या कुफा में हदीस सुनने को मिल रही है। तो इसमें अपने तलबा को आपने तंबीह फरमाई कि भाई बेमशक्कत चीज समझ करके उससे गाफिल मत हो जाना, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी नसीहत हो गई कि भाई हमको दीन का इल्म मिल रहा है, तमाम तर सहूलियात के साथ, तमाम तर सहूलियात के साथ, तो इतना बड़ा दीन का इल्म तमाम तर सहूलियात के साथ मिल रहा है तो उसकी ना कदरी न करे, उसको भूल न जावे, उसको याद रखे, अमल करे, उसकी इशात करे। अगर तलबे अजीज सोच लेवे कि असातिज़े किराम एक एक सबक की तैयारी के पीछे कितनी मेहनतें करते हैं, कम से कम उससे आधा वक्त वो दे देवे तो भी बड़ी गनीमत है।